तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो, यार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो।
ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले दो राज्यों के बीच संबंध इतने बिगड़ गए कि युद्ध की स्थिति आ गई। वो दोनों राजा एक योगी एक साधु के पास पहुंचे, जो कि बहुत विख्यात था, और जो कुछ वो कहता था वो सत्य होता था। पहला राजा जब उस योगी के पास पहुंचा और पूछा युद्ध का परिणाम क्या होगा, उस योगी ने कहा तुम्हारी हार निश्चित है, तुम्हारे भाग्य में हार ही है। दूसरा राजा जब पहुंचा तो यही प्रश्न, मेरा क्या होगा, उस योगी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। जो पहला था पहले थोड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा यदि मेरी हार ही निश्चित है, परंतु क्यों ना मैं संपूर्ण प्रयत्न करूं, जो कुछ मुझसे हो सकता है, हारना तो है वो मेरे हाथ में नहीं, परंतु मैं प्रयत्न तो अवश्य कर सकता हूं और वो तैयारी में लग गया। दिन रात एक कर दिया, रातों की नींद छोड़ दी। और जो दूसरा था और जिसने ये सोचा था कि जीत तो निश्चित है, वो शिथिल हो गया। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं जब जीत ही मेरी है। और फिर वो घमसान युद्ध हुआ। जो दूसरा था उसके घोड़े की नाल थोड़ी निकल गई, मंत्री ने कहा इसे ठीक कर दो, परंतु उस राजा ने कहा क्या जरूरत है, क्योंकि जीत तो हमारी निश्चित ही है। लड़ाई के मैदान में पहुंचे, घनघोर घमसान लड़ाई हुई, दो राजा आमने सामने आए और जो दूसरा था, जो सोच रहा था मेरी जीत निश्चित है, वो घोड़े से गिर पड़ा, हार गया, भाग्य पलट गया। और जो पहला, जिसके लिए कहा गया था कि तुम्हारी हार है, वो जीत गया, पासा ही पलट गया, युद्ध पूरा हुआ। वो दोनों फिर पहुंचे उस योगी के पास। दूसरा पूछता है, आपने तो कहा था कि मेरी जीत निश्चित है, फिर मैं हार कैसे गया, क्या भाग्य पलट सकता है? उस योगी ने कहा, भाग्य तो नहीं पलटा, व्यक्ति बदल गए बस। क्योंकि पहला जो था उसने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे बता दिया गया था परंतु उसने उसे स्वीकार नहीं किया, कर्म को प्रधान माना। और दूसरा जो था उसने स्वीकार कर लिया कि है, परंतु कर्म छोड़ दिया, पुरुषार्थ छोड़ दिया, इसलिए उसकी हार हुई। ये प्रश्न सदैव सदियों से मनुष्य के मन में रहा है, श्रेष्ठ क्या है, भाग्य या पुरुषार्थ? अपनी कमजोरी के लिए मनुष्य ने हमेशा दूसरों को दोषी ठहराया है, ये सोचना कि सब कुछ भाग्य से हो रहा है, अपने दायित्व से मुक्त होना है। यदि वो कार्ल मार्क्स का फॉलोअर है तो कहेगा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, यदि वो सिगमंड फ्राइड का फॉलोअर है तो कहेगा सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है, यदि वो धार्मिक व्यक्ति है तो कहता है ईश्वर करा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है, यदि वो कर्म सिद्धांत को मानने वाला है तो कर्मों सिद्धांत पर छोड़ देता है। परंतु ये समझना कि हम सब भाग्य की कठपुतलियां है, तो हमारे हाथ में ही क्या है फिर, हम हैं ही किस लिए फिर, हम कर ही क्या रहे हैं यदि हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, यदि पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, भाग्य हम हर दिन लिख रहे हैं और कलम हमारे हाथ में है। यदि भाग्य हमारे हाथ में ही नहीं है तो हार तो निश्चित है फिर, ना तो दूसरा व्यक्ति और ना ही समाज, ना ही कहीं बैठा हुआ कोई ईश्वर ये कुछ कर रहा है। यदि हम कहें कि ईश्वर कराता है, कर रहा है, तो दुख मिला तो वो भी फिर दुख तो उसी ने दिया, तो वो दुखवादी हुआ। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी, उसका जिम्मेवार कौन? जैसे मेरे संबंध है, जो मेरा अतीत है, जो वर्तमान में स्थिति है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, आवेग है, खुशी है, आह्लाद है, चेतना की जो स्थिति है वो किसने निर्माण की है? किसी और ने या मैंने स्वयं? यदि इतना भी आभास हो जाए तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। और आप सबको एक सुनहरा अवसर मिला है स्वयं को देखने का, एक ऐसी स्थिति में जाने का जहां मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। सुबह से जितनी ज्ञान की बातें आपने सुनी, शायद इस संसार में ऐसा कोई स्थान होगा जहां ऐसे वातावरण में और ऐसी ज्ञान की बातें सुनाई जाए। और जो व्यक्ति सुना रहे हैं, अभी अभी स्वामीनाथन भाई जी बैठे थे, उनके शब्दों में जो पावर थी, वो शक्ति आंतरिक धारणा से आ रही थी। शब्दों में जो वाइब्रेशंस थे वो आंतरिक पवित्रता के थे, और ऐसे एक नहीं असंख्य है यहां पर। कितनों को ऐसा लगा कि यहां पहुंचते ही किसी ने हमारे मन के टेंशन को खींच लिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, जस्ट पहुंचे और यहां हम बैठे। अनुभव किया होगा कि कोई एक दिव्य शक्ति है, कोई एक अदृश्य शक्ति है, एन इनविजिबल पावर जो इस वायुमंडल में है, जो इस वातावरण में है। पता नहीं, न मालूम कैसे प्रकंपन इस वायुमंडल में है, क्या सुगंध इस भूमि से आ रही है कि जिसने चित्त को शांत कर दिया, स्थिर कर दिया, एकाग्र कर दिया, देखने पर मजबूर कर दिया स्वयं को। अब तक दूसरों को देख रहे थे, अब स्वयं को देखना है, अपने आप को देखना है। कहां मैं भाग रहा हूं, किस ओर और क्यों और किस लिए, क्या जीवन का लक्ष्य है। हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यहां पर जो भी बातें आपको सुनाई जाएगी, जरूरी नहीं है वो सभी आप मान लो। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज यू हैव हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स और इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशंस। एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। कुछ भी स्वीकार नहीं करना, जिसको जो बोलना है बोलने दो, परंतु हम गहराई से उसके ऊपर सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने लाइफ से कंपेयर करेंगे। डू नॉट कम इन टू द स्पेल ऑफ एनी हिप्नोसिस, फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। और एक सूक्ष्म बात, जो बातें आप यहां सुन रहे हैं, इससे कई गुना अधिक शक्तिशाली बात आपको जो आप सुनेंगे वो किसी स्पीकर के द्वारा नहीं। द ग्रेटेस्ट स्पीच दैट यू विल एवर हर्ड इन दिस कैंपस वो रहेगा, किचन में कोई भाई है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन मांझ रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ड्राइवर है, कोई छोटा सा डिपार्टमेंट है, वहां कुछ वो माता है रोटी बेल रही है, उसके पास जाकर ये पूछना कि तुम यहां क्यों आए, और उसको बोलने नहीं आता, उसे तो ये भी नहीं पता यहां कोई कॉन्फ्रेंस चालू है, वो अपनी सेवाओं में इतने लगे हुए हैं, कोई खबर भी नहीं है, वो शायद अशिक्षित अनपढ़ भी हो सकता है, हो सकती है। उस व्यक्ति से ये पूछना कि भाई, माता, बहन, तुम यहां क्यों आए हो, और उसका वो जो उत्तर होगा, एक मिनट का, दो मिनट का, उसकी टूटी हुई भाषा में दिया हुआ, वो सबसे बड़ा उत्तर, सबसे बड़ा स्पीच, सबसे बड़ा शिक्षा होगी सभी के लिए। क्योंकि हर आत्मा जो यहां तक पहुंचती है, जरूर कुछ ना कुछ उसका भाग्य, तो क्या कहो, कुछ ना कुछ कई जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं तब यहां आती है। और एक प्रश्न आप सब से, आप सबको यहां किसने लाया, किसने लाया, बाबा छोड़ के बताओ, भाग्य ने, भाग्य छोड़कर बताओ, परमात्मा छोड़कर बताओ, मन ने, मन छोड़कर बताओ, कौन लाया, भाग्य छोड़कर बताओ, निश्चय छोड़कर बताओ, कौन लेके आया। दे दिया तो लाई है, वो निमित्त बन गई, वो महान आत्माएं हैं, उनको छोड़ के बताओ। संस्कार तो ठीक है, और किसने, जन्म जन्म के किए हुए अपने ही पुण्यों ने ढकेल ढकेल कर यहां तक पहुंचाया। बिना पुण्य के यहां पर कोई आत्मा आ नहीं सकती, क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हो, जिस स्थान पर आप यहां आए हो, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहां पर प्रभु परमात्मा के प्रकंपन है, ऐसे प्यूरिटी के वाइब्रेशन है यहां पर जो सर्वत्र सारे संसार में और कहीं नहीं हो सकते ना होंगे। यहां तक पहुंचना हो सकता है किसी ने टिकट बनाया और टाइम पर कैंसिल कर दिया, उसकी जगह दूसरा कोई आ गया, ऐसा भी होता है और हुआ है। यहां आते ही, यहां आना कोई साधारण बात नहीं है, ये जीवन का टर्निंग पॉइंट है जहां आप पहुंचे हो। अब तक का जो जीवन और अब तक का इसके बाद का जो जीवन होगा वो दूसरा होगा। भाग्य ने ऐसी करवट बदली है। तो आज के इस सत्र में हम ये देखेंगे कि ये जो भाग्य है, ये जो नियति है, ये जो तकदीर है, फॉर्च्यून है, डेस्टिनी है, ये हमारे हाथ में कैसे आ जाए, हमारी मुट्ठी में कैसे आ जाए, हम अपने जीवन को क्या करें, किस दिशा में ले जाए, इधर या उधर। अब तक तो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे, नमालूम कहां भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं, पर भागे जा रहे हैं। और एक कहानी हमको बहुत ज्यादा याद आती है और बहुत अच्छी लगती है, 1886, लियो टॉलस्टॉय, रशियन ऑथर। हाउ मच लैंड डज द मैन नीड, उस शॉर्ट स्टोरी का शीर्षक है। उसमें दिखाया एक व्यक्ति है पखोम नाम का, रूस में रहता है, गरीब किसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, छोटी सी टुकड़ी है, टुकड़ा है भूमि का। एक परिव्राजक, एक सन्यासी उसके पास आता है, कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, वहां पर भूमि बहुत सस्ती है, दूर एक जगह है, वहां क्यों नहीं जाते। वो कहता है अच्छा। वो रात भर सो नहीं पाता, सुबह उठते ही निर्णय लेता है कि मैं अपनी ये छोटा सा टुकड़ा भेज दूंगा और वहां जाऊंगा, और वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर पूछता है यहां भूमि के क्या भाव है। वो कहते भूमि के भाव यहां तो फ्री है, केवल एक ही शर्त है, और वो शर्त है सुबह से उठकर लेकर तो शाम तक तुम्हें भागना है, और जितना भागोगे वो सारी जमीन तुम्हारी। वो कहता है अच्छा। रात भर सो नहीं पाता, करवटे बदलता है, सुबह उठता है, सारा गांव वहां पर एकत्र है, और वो भागने को तैयार हो जाता है और भागना चालू करता है। इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, क्योंकि जितना भागूंगा उतनी भूमि मेरी होगी। भागते 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 उसे प्यास लगती है, सोचता है पानी पीने के लिए रुक गया तो भूमि कम हो जाएगी, पानी की बोतल फेंक देता है और भागता है और भागता है और हाँफता है। भूख लगती है, सोचता है खाने के लिए अगर रुक जाए, खाना तो लाया है पर यदि रुका तो जमीन तो कम हो जाएगी, फेंक देता है और भागता है और भागता है और भागता है। दोपहर ही हो जाती है, ऊपर देखता है सूरज सिर पर है, सोचता है अब वापस भी तो जाना है क्योंकि शाम तक पहुंचना है। परंतु जैसे ही सोचता है वापस लौटू, सामने वाली जो जमीन है थोड़ी ज्यादा ही हरी है, उपजाऊ, फर्टाइल, उर्वर। सोचता है थोड़ा और भाग लेता हूं फिर वापस जाऊंगा। थोड़ा और भागता है, फिर 2 बज जाते हैं। सोचता है अब तो वापस जाना ही चाहिए, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही हरी दिखाई दे रही है। सोचता है थोड़ा और भाग लू, और भागता है, और फिर तो एक समय ऐसा आता है सोचता है अब अगर लौटा नहीं तो जमीन गई, और लौटना चालू करता है, और उधर सूर्यास्त हो रहा है, इतना तेजी से भागता है, भागता है, हाँफता है, भागता है, भागता है, हाँफता है, भागता है। दूर गांव वाले सारे इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे, और तेजी से भागता है, सूर्यास्त इधर हो रहा है, इतना भागता है, इतना भागता है, बस अब थोड़ा सा ही अंतर रह जाता है, और पहुंचता है और धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर से मर गया। ऐसा क्यों हुआ? एक लालच, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? टाइम का ध्यान नहीं था, ऐसा क्यों हुआ? संतुष्टि नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ? उसके भाग्य ऐसा क्यों हुआ? अति में चला गया, कहीं वो मैं तो नहीं जो भाग रहा है? कोई आवाज पीछे से पुकार रही है, कहती है रुको आ जाओ टर्न बैक, हम कहते हैं नहीं, थोड़ी सी जमीन और ले लूं, एक प्लॉट और, एक बंगला और, एक गाड़ी और, ये पोस्ट अच्छी है, वहां चला जाऊं और थोड़ा ले लूं, और थोड़ा ले लूं, और थोड़ा थोड़ा ले लूं, और थोड़ा 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 करते करते हथौड़ा काल का, तृप्ति नहीं। तो जीवन की इस अनंत यात्रा में मैं कहां भाग रहा हूं, किस ओर भाग रहा हूं, किस दिशा में भाग रहा हूं और क्यों भाग रहा हूं? अब तक जो मुझे मिला क्या मिला, मैं क्या करूं? क्या जीवन के वो प्रश्नों ने मुझे पकड़ा है कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, मुझे करना क्या है, किस लिए आया हूं? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ये घर, ये बंगला, ये संपत्ति, ये परिवार, ये मित्र, ये संबंधी, ये रिलेशन, ये सोशल मीडिया, बस यही जीवन है? क्या इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई और लक्ष्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में जब प्राण तन से निकले ऐसा लगे कि मैं रिक्त जा रहा हूं? एक साइंटिस्ट ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ माई लाइफ आई फाइंड दैट लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन संशोधन में लगा दिया और आज जब जीवन की शाम है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं रिक्त हूं, खाली खाली सा है? कहीं ऐसा तो नहीं, एक सुनहरा अवसर हर एक को मिला है स्वचिंतन का, साइलेंस का, मौन का, एकांत का, रुकने का, अपने आप को देखने का, आत्म अवलोकन। अंग्रेजी में बड़ा सुंदर शब्द है सोल सर्चिंग, सेल्फ एनालिसिस। स्टॉप स्टैच्यू, वेट, थिंक विद इन, डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट। तो सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, रेड लाइट, एक मिनट के लिए आंखें बंद। जीवन की अनंत यात्रा में मैं आज स्वयं को देखता हूं, कहां भाग रहा हूं, सो रहा हूं या जाग रहा हूं, क्या वही कर रहा हूं जो करने आया था? क्या जीवन का यही लक्ष्य है? कौन से ख्वाब देखे थे? वो बचपन के दिन और वो सपना, क्या उम्मीदें थी जीवन से? क्या जीवन वैसा ही सुखद है, आनंद से भरा है? या मैं भटक गया हूं? किसने भटकाया? दिखाई दे रहा है मेरी आंखों के सम्मुख एक विशाल सा पर्दा। मेरे जीवन का देख रहा हूं स्वयं को, मेरा वो बचपन, वो घर, वो माँ बाप, वो भाई बहन, वो मित्र, वो स्कूल, कैसा निश्चिंत जीवन था, वो कॉलेज, वो कॉलेज के दोस्त, वर्तमान का अब मेरा घर, ऑफिस, भागती दौड़ती जिंदगी, कहां से शुरुआत की थी, कहां पहुंचा? ये कैसी यात्रा मैंने पार कर ली? देख रहा हूं सब है पर फिर भी खाली बन क्यों? कहां गलती हो गई? Let me turn within. Let me seek myself. Where I am lost. What I was and what I have become. क्या मैं वही हूं जो दिखाता हूं या कुछ और? क्या ये व्यक्तित्व खंडित नहीं? Where I am lost, the real me. और क्यों ऐसा आज लग रहा है कि मैं अपने आप से बहुत समीप हूं? वर्तमान में अब यहां बैठकर जो मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूं वो मेरा स्वरूप है। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज फॉल्स, अ सुडो मैन, अ सुडो वुमन। ओम शांति। तो भाग्य को हमें अपने वश में करना, और भाग्य हमारे वश में है ही है, और भाग्य की कलम भाग्य विधाता ने हमारे हाथ में दी है, किसी और के हाथ में नहीं। और हम अपना भाग्य रोज लिख रहे हैं, हर दिन लिख रहे हैं, और जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में भाग्य के ऐसे 26 आधार, 26 बातें, 26 इस भाग्य से कि कलम से लिखी हुई कुछ बातें, इन 26 में से कोई एक भी यदि धारण कर ली जाए तो बाकी 25 उसके पीछे पीछे आ जाएगी, कोई भी एक। और जो बातें हम आपसे बताएंगे कहेंगे वो कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा मन में लिखो। सुनते सुनते ही उन्हें धारण करते जाना। मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो लिखता है और फिर कहता है फुर्सत मिलेगी तब पढ़ूंगा, और फुर्सत फिर कभी मिलती नहीं। जितने कॉन्फ्रेंसेस आप लोगों ने अटेंड की होगी, चाहे प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल, जो कुछ लिखा था उस कॉन्फ्रेंस में बैठकर शायद ही किसी ने कभी डायरी खोली होगी, बहुत कम। फिर भी लिखना एक अच्छी बात है याद रखने के लिए, परंतु जो बातें आज आप सुनेंगे, बैठे बैठे ही संकल्प करना, क्योंकि जैसे कहा यह कोई साधारण भूमि नहीं है। इस पवित्र भूमि पर जो संकल्प किए जाते हैं, जो प्लेज ओथ प्रॉमिसेस, वो साकार होंगे। देयर इज विल बी एन एक्स्ट्रा फोर्स इन योर थॉट, इन योर प्रॉमिस, इन योर प्लेज, इन योर ओथ। प्रॉमिस कहां किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है, किस संगठन के बीच किया जाता है, किस मनस्थिति पर किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सुनते सुनते ही धारण करना, और दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है उस बीच इनर वर्ल्ड, अंतर जगत की यात्रा करके आ जाना, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुए हैं आज तक व्यक्तियों के जीवन में, वो मौन में हुए हैं, एकांत में हुए हैं, उस अज्ञात पलों में हुए हैं जो उनको भी नहीं पता थे। और अंदर संकल्प महात्मा गांधी के जीवन में दिखाया है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, अफ्रीका में है, एक स्थान से किसी और स्थान पर जा रहे, हाथ में एक छोटी सी किताब है, रस्किन अनटू दिस लास्ट नाम की एक किताब, वो किताब पढ़ते पढ़ते रातों रात परिवर्तन हो गया। क्योंकि मन इतना एकाग्र था उस समय कि उस किताब ने जादू कर दिया, सत्याग्रह का जन्म हो गया ट्रेन में ही। Want to this last? तो अभी आप जहां बैठे हैं, चाहे यहां या इस संपूर्ण परिसर में और कहीं पर भी, मौन से साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर यहां की हर चीजें देखना, सुनना, लोग क्या करते हैं देखना, किस तरह का इनका जीवन है। जैसे मैंने कहा, द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स आर नॉट दोज हु आर ऑन द डायस, बट दोज हु आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक कलेक्टर साहब आए थे, यहीं रुके थे, उनको जाना था शांतिवन, ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो एक भाई, बहुत अनन्य भाई, सेवाधारी भाई, साइकिल थी, उसको क्या पता ये कलेक्टर है, उसने कहा मेरे साइकिल पर बैठ जाओ, और दंडे पे बिठा कर लेके गया यहां से शांतिवन। और उस कलेक्टर साहब को इतनी खुशी हुई, उसने कहा ऐसा सच्चा व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं, इतना साफ दिल। जो लेक्चर्स में सुना होगा वो सब भूल गया, याद रहा ये व्यक्ति, क्योंकि सच्चाई थी, पवित्रता थी, ऑनेस्टी थी, निर्मल जीवन था, स्वच्छ चरित्र था, इसका ही प्रभाव है। तो ऐसी हम 26 बातें देखेंगे। भाग्य की लिपि भाग्य की कलम से लिखी हुई। सबसे पहले ए, ए अर्थात ए फॉर एम्बिशन एम, हमारे जीवन का एम क्या है? पैसा कमाना, दौलत कमाना, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी, सोशल लाइफ, इंटरनल हैप्पीनेस, व्हाट? जोसुआ लिबमन था एक अमेरिका का बड़ा प्रसिद्ध व्यक्तित्व, वो जब जवान था 20 साल का, उसने एक लिस्ट बनाई थी, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, सब लिखा उसने, फैमिली, वाइफ, वेल्थ, हैप्पीनेस, दिस, बहुत सारी लिस्ट बना दी एक। और उसी के शहर में एक बाहर एक भारत की भाषा में फकीर, उनकी भाषा में एक वाइस मैन रहता था, उसको जाके दिखाया, ये मैंने लिखा है, ये मेरे जीवन के लक्ष्य। तो वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था, बूढ़ा सा, उसने क्रॉस कर दिया पूरा और लास्ट में लिखा एक ही चीज, पीस ऑफ माइंड। ये नहीं लिखा तुमने, ये नहीं तो ये सब व्यर्थ, सब पा लिया पर मन अशांत है। इसी जोसुआ लिबमन ने लेटर ऑन ही रोट वन बुक, पीस ऑफ माइंड, विच इज अ वर्ल्ड फेमस बुक। जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे ही भागते जाओ, वो पखोम जैसा भागते जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं, लास्ट में सब खड़ा है आंखों के सामने, पर सुख नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं, बेचैनी है, अजीब सी बेचैनी है, रात में नींद नहीं आती है, गोलियां खा खा के सो रहे परंतु फिर भी नींद नहीं है, अशांत है मन, रिश्तों में तनाव है, एक अज्ञात सा तनाव। बाहर से लोग कहते हैं इनका परिवार बहुत सुखी है, पर अंदर से द्वंद्व है, संकल्पों का द्वंद्व है। क्या यह जीवन का लक्ष्य है? क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जीवन आनंदमय हो जाए और हमारा जीवन अपने लिए ना हो, किसी दूसरों के लिए हो जाए? वो तो बहुत ऊंची बात है, पर पहले अपना जीवन तो पहले खुशहाल खुशनुमा हो जाए। तो सबसे पहली चीज, यदि भाग्य हमें बनाना है तो लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्यहीन, लक्ष्य विहीन जीवन कहीं नहीं पहुंचाएगा। अभी इसी वक्त लक्ष्य ये नहीं है आईएएस ऑफिसर बनना है, लक्ष्य ये नहीं है हमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, लक्ष्य ये नहीं है बहुत फेमस बनना है, दीज आर नॉट द गोल्स। लक्ष्य है आंतरिक खुशी, लक्ष्य है इनर इमोशनल स्टेबिलिटी, लक्ष्य है अ हार्ट विच इज फ्री फ्रॉम गिल्ट, अ हार्ट विच इज फ्री फ्रॉम सेल्फ विक्टिमाइजेशन एंड ब्लेम गेम। ये दो चीजें आज संसार में बहुत ज्यादा चल रही है, या तो दूसरों को दोषी ठहराना, यू, या तो खुद ही को दोषी ठहराना, सेल्फ विक्टिमाइज, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, मेरे वजह से हुआ, मैं नहीं रहना चाहिए था, मेरे वजह से ये सब हो रहा है। हीनता का ऐसा गहरा भाव कि खुद ही, एक तो तीर ऐसा चलाना, एक है अपने आप को चलाना। दीज टू थिंग्स, एम आई प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड? First and the foremost thing, decide what I want in life. मुझे चाहिए क्या? क्योंकि संसार जिसे प्राप्ति कहता है, एक अध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए वो अप्राप्ति है। संसार जिसे अप्राप्ति कहता है, खोना कहता है, वो शायद अध्यात्म में पाना है। ये थोड़ा सा अंतर है। वहां पर जो खोना है यहां शायद वो पाना है, और वहां जो पाना है शायद यहां खोना है। थिंक वेरी डीपली व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड। तो यहां से जाने से पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यहां तक पहुंचना है। वो खुशी हो सकती है, शांति हो सकती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की हार्मनी हो सकती है, या फिर मैं किसी हर्ट में जी रहा हूं। अभी अभी भाई साहब बता रहे थे हर्ट की बात, वो जो फोल्डर है ना, उसको डिलीट नहीं किया है, अंतर मन में ऐसे गहरे जख्म है, शायद किसी ने दिए है 10 साल पहले दिए, पर अब तक हमने उसको माफ नहीं किया है। हमारे पास एक पेशेंट आती थी, इतनी मोटी फाइल थी उसकी, विदेश से, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, सारे दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, कितने एंटी डिप्रेसेंट्स चेंज किए। अभी भी जब आई तो विदेश वाले लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे डोज बढ़ा दो, भारत वाले कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे डिप्रेशन है, उधर डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे डोज बढ़ा दो डिप्रेशन की गोली का। गहराई में गए कि ऐसा क्या डिप्रेशन है, क्यों नहीं गया। कई साल पहले जब वो युवा थी, नाउ शी इज 60, शी यूज टू लव अ मैन एंड शी हैड अ यंगर सिस्टर, बट हर यंगर सिस्टर मैरिड दैट मैन एंड बट शी यूज टू लव हर सिस्टर ऑल्सो टू मच। वो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करती थी, पर जिससे उसको शादी करनी थी और जिसको उससे प्यार था, उसकी छोटी बहन ने उससे शादी कर ली और वो अपने बहन को भी कुछ नहीं कर सकती थी। परंतु ये बात ने ऐसा गहरा असर छोड़ दिया, एक नफरत अपनी बहन के लिए, कि वो अपनी बहन को माफ नहीं कर पाई। और बाद में वो आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ी गई, बहुत सारी संस्थाओं से, और वहां तो वो दब गया, सप्रेशन हो गया एंड शी वेंट इन डिप्रेशन। जब वो हमारे पास आई और ये सारी कहानी, और उसको कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे योगिक एक्सपेरिमेंट दिए गए कि रोज अपनी बहन को इमर्ज करना और उसे माफ कर दो, तब कहीं उसका वो डिप्रेशन दूर हुआ। क्योंकि एक ऐसा जख्म था अंदर दिया हुआ, वेरी वेरी डीप हर्ट, कि दैट वॉज नॉट अलाउविंग हर टू लिव हर लाइफ फुल्ली, एंड वेन शी फॉरगेव दैट टाइम शी बिकेम काम। तो सबसे पहली बात, डिसाइड एम एम्बिशन ऑफ लाइफ। एंड वन मोर थिंग, रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। जब एम्बिशन कह रहा हूं तो संसार की लौकिक एम्बिशंस जो है वो भगाती है, दौड़ाती है, पागल कर देती है, जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ, एम्बिशियस, उसने उसको गिरा दिया। डिसाइड कि मुझे चाहिए क्या, अपनी ग्रीड को नीड का नाम देकर बढ़ते जाना सेल्फ डिसेप्शन है। शायद हमें उतना नहीं चाहिए जितना हम भाग रहे पाना चाहते हैं, खुश रहने के लिए बहुत कम चाहिए। फर्स्ट एम्बिशन। दूसरा, बी बिलीव इन वन सेल्फ, अर्थात कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकराल हो, मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, अनुरिमा सिन्हा ट्रेन से जा रही थी, ट्रेन से गिर गई, दूसरी ट्रेन चली गई, पैर कट गया, एम्स में एडमिट थी। कितना दिन जो आता था डिप्रेस करके जाता था, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वहीं पर उसने संकल्प किया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, आई कैनॉट लिव लाइक दिस। And then she climbed Mount Everest, the first paralyzed woman who did it. उसी तरह आपने सुना होगा आयशा चौधरी, सुना है किसी ने, गुड़गांव या दिल्ली की, 15 साल की, she has died अभी 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले। बचपन से ही ऐसी बीमारी के साथ में जन्म लिया उसने, कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कई बार एडमिट हुई, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ 8 साल की उम्र में। शी बिकेम द मोटिवेशनल स्पीकर, 15 साल की एज में मोटिवेशनल, आप उसके वीडियोस देखो जाकर, द वे शी इज स्पीकिंग, वो पावर उसमें कहां से आई, नहीं तो 15 साल की लड़की में इतनी पावर। शी डाइड ऑल्सो, और उसको भी पता था आई एम गोइंग टू डाई। एट द एज ऑफ 12 शी स्टार्टेड गिविंग क्लासेस मोटिवेशनल स्पीकिंग With her experience, उसकी एक किताब भी है छोटी सी, My Little Epiphanies, जो उसने बेड पर, बिस्तर पर एडमिट, बार बार ब्रेथलेस, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन, वो लिखती जाती थी अपनी। यू शुड रीड दैट बुक, स्मॉल बुक, छोटी सी, 15 साल की बच्ची ने, उसके मरने के बाद वो पब्लिश हुई, My Little Epiphany, Epiphany अर्थात manifestations, beautiful English she has used. बिलीफ, ये नहीं कहना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, परिस्थितियां ऐसी है, ये वैसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, फॉरगेट ऑल दिस। एडिसन जब था, सब कुछ जल गया उसका, थाउजेंड आइलैंड अमेरिका में उसकी पूरी रिसर्च लेबोरेटरी जो थी 1910 में जल गई। वो खड़ा हुआ देख रहा, उसका बेटा भाग भाग के आया, कहता है ये क्या हो गया। वो कहता है कि जा अपनी मम्मी को बुला के लाओ। ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा होगा, सो ब्यूटिफुल। एंड ही सेज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, सी माय सन, ऑल आवर मिस्टेक्स आर गेटिंग बर्नड अप। इतनी बड़ी रिसर्च लैब जिसमें कितने सालों का संशोधन, सब कुछ सब खत्म हो गया। एंड विद इन सिक्स मंथ्स ही रिक्रिएटेड एवरीथिंग। उसके बेटे ने रोट दिस एक्सपीरियंस इन रीडर डाइजेस्ट 1952 में। खुद पर ऐसा विश्वास कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारेंगे। वो पावर कहां से आती है? वो पावर मेडिटेशन से आती है, जो आपको यहां सीखना है। वो पावर आंतरिक विश्वास से आती है, अपने आप को देखने से आती है कि सब कुछ मेरे अगेंस्ट है बट आई विल सर्वाइव। तो टू बिलीव इन योरसेल्फ, सी क्रिएटिविटी। वही 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 सुबह उठना, वही करना, वही करना, वही जॉब, वही ट्रैवल, वही ऑफिस, वही सारे सेम वर्क, इवनिंग आना, वही टीवी, वही सोशल मीडिया, वही सब कुछ, रात में सो जाना, फिर उठना, सेम लाइफस्टाइल चालू है। देयर इज नो क्रिएटिविटी इन दिस सच ए लाइफस्टाइल। लाइफ विल बिकम डल एंड बोरिंग, मोनोटोनस। फिर कहां से भाग्य और कहां से क्या? फिर भाग्य को दोषी ठहराएंगे, मेरे भाग्य में ही ऐसा है, मेरे भाग्य में ही वैसा है। ब्रिंग सम क्रिएटिविटी। जितने भी म्यूजिशियंस है, जितने भी बिगेस्ट स्टोरीज स्टोरी राइटर्स है, जितने भी स्कल्प्टर, जितने भी महान इस तरह से लोग हुए हैं, म्यूजिशियंस से लेके सारे पोएट्स, कहां दे यूज टू क्रिएट समथिंग न्यू। A.R. Rahman had said somewhere in one interview, जब मुझे कोई नया म्यूजिक क्रिएट करना होता है तो मैं क्या करता हूं, एकांत में चला जाता हूं और यह भूल जाता हूं कि यह अभी जो म्यूजिक मैं तैयार करूंगा उसका कौन सा गीत बनेगा और उसकी कितनी प्रसिद्धि मिलेगी और कितना अवार्ड मिलेगा। आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, आई जस्ट फोकस ऑन इनसाइड विद इन मी दैट आई हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड दैट्स व्हाई द न्यू म्यूजिक इज क्रिएटेड। बट देन यू हैव टू गेट रीड ऑफ ऑल दोज थॉट्स, those thoughts that irritate you or that make you shake, tab creativity ka janm hota hai. To bring creativity. The third principle to create fortune is creativity. Navinta, rachanatmakta, srijanatmakta. Subah uthte ho, abhi kuch aur karo uthte hi, rather than straight away taking mobile and seeing whatever the how many likes and how many dislikes, rather than getting up and immediately sending here and there something or other, do something new which you have never done before. Hum dekhte hain yahan par upar hospital hai, jinhone dekha hoga, hum dekhte hain kuch log, they come in the hospital with flowers aur har patient ko ek ek phool deke chale jate hain. Bas unko usi mein khushi milti hai. They don't speak, don't do anything, just hand over the flower. That's newness. किसी की मदद कर दो और निकल जाओ। जैसे भाई साहब अभी भी बता रहे थे, याद नहीं है कितने कितनों लोगों को मिले, जो कर दिया और निकल गए। These are small, little acts of kindness, goodwill. इससे बड़ा, this is a creativity actually, something new which we do out of our way. So C is creativity. Then D is discipline. क्या हमारे लाइफ में डिसिप्लिन है? एक लामा, बौद्धिस्ट लामा ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। He wrote, that lama wrote in his autobiography, I was 4 year old or 5 year old. मेरे पिताजी ने कहा बेटा कल तुझे ना गुरुकुल जाना है आश्रम में, और हमारे घर का नियम है, खानदान का नियम है, सुबह तब तुम जाओगे 4 बजे, बैलगाड़ी लेने आएगी, तुम बैठ के चले जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, एक बार भी अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो वापस मत आना फिर। वो 5 साल का बच्चा अपनी मां से इतना प्यार करता है, उसको कहा गया है कि पीछे मुड़ के भी मत देखना। एक बार सुबह होती है, बैलगाड़ी आती है, वो बैठता है उसमें, उसको इच्छा होती है मेरी मां को एक बार तो देख लूं, पता नहीं कब आऊंगा गुरुकुल से आफ्टर लर्निंग, पर उसके पिताजी कहते हैं अगर तूने देखा यू कैन नॉट यू हैव नो प्लेस इन दिस होम देन, और वो बैलगाड़ी में बैठ के चला जाता है। इतना उसको दुख होता है पर रोकता है अपने आप को, नहीं देखता है पीछे, और गुरुकुल में पहुंचता है, गेट पे ही उसको रोक देते हैं। वहां के टीचर्स, वहां के आचार्य उसको कहते हैं इस विद्यालय का एक नियम है, आंखें बंद करो और जब तक मैं नहीं आऊं आंखें खोलना नहीं। सुबह सुबह पहुंचा हुआ 5-6 बजे, आंखें बंद और दूसरे विद्यार्थी उसको छेड़ रहे हैं, कोई गुदगुली कर रहा है, उसको कहता है तेरे खानदान से आज तक जितने भी आए अगर तुमने आंख खोल दी तो तुमको वापस जाना पड़ेगा, यहां नहीं रह सकते तुम। फिर धूप, सूरज निकल गया, किरणें पड़ने लगी, कोई उसका बस्ता खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आंखें बंद करके, कोई मिट्टी फेंक रहा है उसके ऊपर, वो आंखें खोलता नहीं है। धूप आ जाती है, सुबह से भूखा है, प्यास लगती है उसको, आंखें नहीं खोलता है, क्योंकि उसके गुरु ने क्या कहा था कि इस नियम, यहां का एक नियम, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। वो कहता है, फिर शाम हो जाती है और वो अंदर लिया जाता है। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा, आई थॉट दीज आर सच क्रूएल पीपल इन दिस वर्ल्ड बट नाउ आई रियलाइज दे वर द रियल टीचर्स बिकॉज दे टॉट मी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। जीवन में अनुशासन क्या है मुझे उन लोगों ने सिखाया। बड़े कठोर थे वो, पहले तो लग रहा था कैसे कटु लोग है, रुथलेस, रिलेंटलेस, निर्दयी, कहीं दिल है कि नहीं, छोटे से बच्चे से ये कराते हैं। पर अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं और अपने जीवन को देखता हूं और पाता हूं कि हाउ ब्लेस्ड आई एम टू हैड सच पीपल इन माई लाइफ हु टॉट मी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। तो हमारा जीवन कैसा है, जब मर्जी चाहे कुछ भी कर लिया, जब मर्जी चाहे इधर चले गए उधर चले गए, घूम रहे कुछ भी कर रहे, इज देयर अ डिसिप्लिन इन माई लाइफ? ब्रिंग दैट डिसिप्लिन, अनुशासन, एक अनुशासित जीवन, दिस ब्लेसिंग रियली। लुक एट द आर्मी, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई, ये नियम है आर्मी का। ये मत पूछो क्या क्यों कहां, अबाउट टर्न तो अबाउट टर्न, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़। कोई पूछता है कि दाएं क्यों मैं बाएं मुड़ता हूं, पूछता है? देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। सो ब्रिंग दैट डिसिप्लिन इन लाइफ। यहां पे इतना बड़ा कैंपस है, हैव यू इमेजिन्ड कैसे चाय बन जाता है सुबह सुबह? कोई आवाज नहीं, हजारों लाखों लोग आते हैं, यहां पर भोजन बन रहा है, कहां बन रहा है, कोई आवाज नहीं। किसी यहां पर आश्रम में एक बार रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे महामंडलेश्वर आए थे, आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे हमारे आश्रम में अगर 500 लोग आ रहे और 100 अगर एक्स्ट्रा आ जाते तो हलचल हो जाती है, अब इनका क्या करें 100 का। यहां तो अभी आप यहां आए, एक ही साथ 3-3 कॉन्फ्रेंसेस चालू है अपने आप। देर इज इंटरनल डिसिप्लिन इन द लाइफ। कोई बॉस नहीं है, किसी को कोई कह नहीं रहा है तुम ये करो तुम वो करो, अपने आप सब चल रहे हैं, क्योंकि हर एक ने अनुशासन को अपनी इंटरनल धारणा बना के रखा है, जीवन की धारणा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने जीवन की धारणा। सो डिसिप्लिन। फिर ई, एनर्जेटिक। एक होता है डल एंड रैप जीवन, मरे मरे जीना, एक होता है उत्साह से भरपूर जीना। ऐसा उत्साह अंदर है, क्या करूं और क्या नहीं, जैसे हर दिन चालू हो रहा है तो एक नया जैसे वरदान मिला है, इस दिन को पूरा शक्ति से भर दूं, आनंद से भर दूं, ये भाव। तो ब्रिंग दैट एनर्जी बैक इन लाइफ, और उसका एक ही सोर्स है इंटरनल जर्नी, बाहर से नहीं मिलने वाला है। जो खोया है वो अंदर है, बाहर नहीं, यह आंतरिक यात्रा है। उसके बाद में एफ, एफ अर्थात फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक क्रिश्चियन लेडी थी, शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड, सेंसुअली हरास्ड by a man, and then she studied, she became doctor, she became surgeon. और जब वो surgeon बन गई थी, एक रात एक मरीज उसके पास आया, bullet injury, he was bleeding, and that needed immediate surgery, and that was the same man. अब उसके सामने था, मैं इसका क्या करूं, मरने दू या इसको operate करूं? वो church में गई, Jesus Christ के चित्र के आगे खड़ी रही और पूछने लगी, ओ लॉर्ड टेल मी व्हाट आई शुड डू। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा और उसको एक आवाज आई, थिंक दैट यू आर ऑन द क्रॉस लाइक मी एस क्रूसिफिक्स एस क्रूसिफाइड, और जो मैंने कहा था और जो मैंने किया था तुम भी वही करो, मैं इन सब को माफ करता हूं. ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग. एंड शी इमेजिन दैट एज इफ शी इज ऑन द क्रॉस एंड शी फॉरगिव दैट मैन, नॉट फॉर दैट पर्सन, फॉर वन सेल्फ. जब तक हमारे जीवन में इतना जो ट्रॉमेटिक पास्ट है एक, और उसकी जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, क्या ये हमें कभी शांत से बैठे देगी? कभी नहीं. हमें उन सब को माफ करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए. नहीं तो हम बेचैन हैं, तो फिर से अलर्ट होके बैठेंगे और उन लोगों को देखेंगे और उन दृश्यों को याद करेंगे, बड़े दर्दनाक जो थे जीवन के, और वो जो व्यक्ति थे. ये संकल्प करना इस पवित्र भूमि पर कि मैं उन सबको माफ करता हूं, जो हो गया वो हो गया, अब एक नए जीवन की शुरुआत. रेड लाइट.
खुले आसमां में ख्वाबों के बंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के बंदे
चेतना को भरा है, एक नए एहसास ने मुझे छुआ है, ये किस वजह से दिल पिघल गया, ये कौन सा आंतरिक परिवर्तन आया है, क्यों महानता का अनुभव हो रहा है, हम बड़े हैं, महान, एक ऊंची चोटी पर मैं बैठा हूं पर्वत के, और वहां से नीचे देखता हूं, मुझे अपने जीवन के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दर्दनाक दृश्य साक्षी होकर देखा, किसी ने दुख दिया, किसी ने सताया, अपशब्द बोले, अपमान किया, षड्यंत्र किया, धोखा दिया, झूठ बोला, दिल दुखाया, देख रहा हूं जीवन में जब जब मेरी निंदा की गई, क्या हुआ, कलंक लगाए गए झूठे आरोप, ऊंची चोटी पर बैठकर मैं सब कुछ देखता हूं, और आज इस भारीपन से मुझे मुक्त होना, ये जो सारे लोग थे ये मेरा ही कार्मिक अकाउंट था इनके साथ, और बड़ी दिल से, सच्चे दिल से मैं सबको माफ कर देता हूं बेशर्त. unconditional pardon. स्वयं के लिए कैसा अद्भुत अनुभव, लाइटनेस, निर्भार अवस्था, और ये भी देख रहा हूं ये सब लोग अब मेरे मित्र बन गए हैं, उनके प्रति मन में जो गहरी घृणा और नफरत थी विदा हो गई, और ये भी देख रहा हूं कि उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया, उनके हृदय में भी अब मेरे लिए प्रेम है। अद्भुत अनुभव है, ओम शांति।